गाड़ी चल रही थी 9 जनवरी सन 1967 की चौथे क्लास पहले पीजी के मध्य में बात चल रही थी। वो योगी तो राजयोगी नहीं है, तुम राजयोगी हो। वो योगी ब्रह्म से योग लगाते हैं, दुनिया भी योगी ब्रह्म से योग लगाते हैं, और ब्राह्मणों की वो दुनिया के कामन योगी ब्रह्मा से योग लगाते हैं। अब योगी तो वो भी कहते हैं, बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु तुम्हारा तो ये राज योग है, जो राज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। बाप राजयोग सिखाते हैं, इसलिए राजयोग अक्षर लिखना ठीक है। दिल्ली में मालवीय नगर वालों ने किचन बनाई है, उसमें लिखा है बी होली बी योगी, ये तो रंग बात हो गई। लिखना चाहिए बी राजयोगी, तो फिर नया बनाए कर लिखो बी होली एंड बी राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती ही रहती है। बाप भी कहते हैं, आज तुमको कुएते कुए अच्छी बातें सुनाता हूं, दिन प्रतिदिन गुएते गुए राज सिखाता हूं। अभी शिव जयंती भी आने वाली है, शिव जयंती तो तुमको बहुत अच्छी रीति मनाना है। कोई ने लिखा था वहां प्लाट पड़ा है, तो शिव जयंती वहां मनावे। बाबा ने नहीं लिख दिया, आज फिर लिख देता हूं, बल वहीं मनाओ। कहेंगे शिव बाबा ने नहीं लिखा, अब फिर हां क्यों कह दिया? अरे ये ड्रामा में ऐसे ही था, तब ना की नूद थी अभी हां की नूद है, ना करना भी ड्रामा में था और हां भी ड्रामा में है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी सर्विस करनी है, जिनके पास भी प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर्स पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का आकृति सीखो, बल्ब बत्तियां आदि भी जगा दो। तुम ज्ञान गंगा हो ना, तो हरेक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं, पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। माताएं क्यों तीखी होती है? पुरुष भक्ति में तीखे क्यों नहीं होते? भक्ति है दिल की चीज और ज्ञान है बुद्धि की चीज। ऐसे तो बोलते हैं तुम सब भक्तियां, तुम सब सीताएं हो, लेकिन नंबर वार है। ऐसे भी कुटुंब होते हैं जहां सभी गीता पढ़ते हैं, तो घर घर में ये चित रख देने चाहिए, लिख दें कि बेहद के बाप से आकर किसी को और अपना वर्षा लो। इससे लो बाप से, आकर के सीखो। किससे सीखो? बाप से आकर के सीखो और आकर के अपना बेहद का वर्षा ले लो, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तुम सच्ची सच्ची दिवाली मनाते हो, वहां घर घर में रोशनी हो जाएगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहां तो अंधेरा है, आत्माओं की बुद्धि जानवर में सलमन पड़ी है। शैतानी अथवा आसुरी बुद्धि बन पड़े हैं। वहां आत्माएं प्योर होने से दैवी बुद्धि रहती है, आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। ये बातें बाप ही समझाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पतित आसुरी बन पड़ी है। जितनी आत्मा पतित है उतना बड़ा असुर, और जितनी आत्मा पावन उतना बड़ा देवता। अभी तो देखो भरतनाट्य पहनी, अभी तुम भरत पाउंड बन रहे हो। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिल जाएगा। तो आत्मा है बीज, शरीर है जैसे वृक्ष। January 1967 की वाणी का दूसरा थी, यहां आत्मा इम्प्योर है तो शरीर भी इम्प्योर है और ये दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर में खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कब राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत बागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदल करके ठक से राहु की दशा बैठ जाती है। ये राहु की दशा कब बैठती है? काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, तो माताओं ने तो मल्ल युद्ध देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती है घर की धरित्री। तुमको भी मालूम है भ्रमरी को धरित्री कहते हैं, क्योंकि घर बनाए लेती है। घर बनाने का अच्छा कारीगर भ्रमरी है, इसलिए धरित्री नाम है। देखो कितनी मेहनत करती है इस बात के लिए, घर बनाने के लिए। उस घर में ला करके किसको बैठाती है? कीड़ों को ला करके बैठाती है और भूं भूं कर करके कीड़ों को आप समान बनाई देती है। तो देखो वो भी पक्का मिस्त्री है। त्रिमूर्ति में पक्का मिस्त्री कौन है? जगदम्बा वैष्णवी देवी या बनाई नव देवी। दो दो तीन तीन कमरे बनाती है और तीन चार को ले आती है। वैसे ही तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे एक दो को बिठाओ, चाहो दस बारह को बिठाओ, चाहे सौ को बिठाओ, पांच सौ को बिठाओ, तुम ऐसा मंडप आदि बनाती हो ना, तो वो घर बनाया हुआ है ना, उसमें बैठ करके सबको भू भू करती हो, फिर कोई तो समझ करके कीड़े से ब्राह्मण बन जाते हैं और कोई सड़े के सड़े रह जाते। तो हम समझते हैं वो हमारे धर्म का नहीं है, इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा, हमारे कुल का नहीं होगा तो उनको टच होने वाला नहीं है। तुम तो फिर भी मनुष्य हो, तुम्हारी ताकत उनसे जास्ती है, तुम 2000 के बीच भी भाषण कर सकती हो। आगे चल करके 4-5 हजार की सभा में भी तुम जावेंगी, भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है, सन्यासी ये भेंट कर नहीं सकते, वो तो किसी को भी राजयोग सिखाए नहीं सकते, विश्व का मालिक तो बाप ही बनाते हैं। और ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, साधु संत आदि कितने ढेर हैं, आजकल माइया भी गुरु बन जाती हैं, कफनी पहन लेती हैं और फॉरेनर्स को ठक्कर के आ जाती वो समझते हैं ये भारत का प्राचीन राजयोग है, कौन समझते हैं, विदेशी समझते हैं, किसको, सन्यासियों को, कौन से सन्यासियों को, मेल सन्यासियों को या फीमेल सन्यासियों को, फीमेल सन्यासियों को विदेशी समझते हैं, ये तो बड़े राजयोगी है, इनका प्राचीन राजयोग है, उनको वो जाकर के माइया कहती है चलो भारत में चल करके सीखो। अब ये कौन सी माइयों की तरफ इशारा हो रहा है, बाहर की दुनिया वालों को पढ़ाई पढ़ाई जा रही है या अंदर वालों को पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, उनको कहती है भारत में चल करके सीखो, परंतु तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे क्या कि चलो भारत में माउंट आबू सुख धाम शांति धाम दिखाई लगे, तुम तो फॉरेन जावेंगी और वहीं बैठ करके तुम समझावेंगी, ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, इसमें कपड़े आदि बदलने की बात नहीं है, यहां ही देह के सब संबंध भूल, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप ही लिबरेटर है, गाइड है, सब को दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम ही पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो, सारा वर्ल्ड सब धर्म वाले आयरन एज में है, कोई भी धर्म वाले हो उनको कहना है अपन को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। पावन बनेंगे फिर मैं साथ ले जाऊंगा, बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं बोल रहे। ये बताना तो बहुत सहज है, तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दो, कोई एक भी अगर रह गया तो उलाहना देगा कि मुझे तो बताया ही नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए, एक दिन जरूर ऐसा आवेगा जो सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं। है? बाप आए हैं या सन 68-69 में चले गए, क्या पता पड़ेगा दुनिया वालों को। मुरली क्या कहती है, एक दिन जरूर पता पड़ेगा सबको कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने के लिए। ये शांति धाम का वर्षा लेने के लिए क्या ऊपर जाना पड़ेगा है? वर्षा कहां मिलेगा शांति धाम का? इसी साकार दुनिया में शांति धाम स्थापन करके जाएंगे। शांति धाम भी स्थापन होगा और साथ साथ सुख धाम भी स्थापन होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा आकर के देता हूं। बरोबर जब डिटीज में था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। अभी आत्मा इम्प्योर है, अभी सभी को प्योर बना करके बाप गाइड बन करके ले जाएंगे। जो साक्षात्कार से चार चित्र बनाए गए हैं उनमें ऐसा कोई चित्र है कि बाप गाइड बन करके सभी आत्माओं को ले जा रहे हो? कल्पवृक्ष के चित्र में ऊपर दिया हुआ है, सब आत्माएं नीची स्टेज से ऊंची स्टेज में जा रही, और चित्र किसका रखा हुआ है? शंकर का चित्र रखा हुआ है। तो सभी को प्योर बना करके बाप ले जाएंगे। तो बाप का वो प्रैक्टिकल रूप कौन सा हुआ? मूर्तियां तो तीन है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, उनमें बाप का रूप कौन सा हुआ? इस वाक्य से तो यही साबित होता है कि बाप गाइड बनकर के आता है, पंडा बनकर के आता है। उस पंडा के तुम प्रैक्टिकल में पांडव बच्चे बनते हो। रीति धर्म वाले नंबर वार आवेंगे, कितना सहज है। ये सब बातें तो बुद्धि में धारण होनी चाहिए। जो सर्विस करते हैं वो आगे चल करके छुपे नहीं रहेंगे, और जो डिसर्विस करने वाले हैं वो भी छुप करके नहीं रह सकते। किसने कितनी सर्विस की है और किसने कितनी डिसर्विस की है, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। सर्वसेवन को तो सभी बुलाते रहते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े बुला देंगे, वो तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां ऐसी होती है क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं दे सकते, तो नाम बदनाम हुआ ना। पूरा रिस्पॉन्ड देना कब हो सकता है, जब पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा तो पूरा रिस्पॉन्ड दे सकेंगे। ज्ञान ही पूरा बुद्धि में नहीं बैठा है तो रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते, नाम बदनाम करने वाले कौन हुए, जो पूरा गहराई तक ज्ञान खुद ही नहीं जानते, बर्थनाट्य पहनी जाकर के बनेंगे। जैसे यहां कोई करोड़पति पद्मपति भी होते हैं और कोई तो देखो भूख मर रहे हैं, भीख पर उनका शरीर निर्वाह होता है, भीख मांगते रहते हैं, रोटी और कपड़ा और मकान बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बैगर्स भी आकर के प्रिंस बनते हैं, ऐसे भीख मांगने वाले भी आकर के बाप के पास आवेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे और पढ़ करके क्या बनेंगे, प्रिंस बन जाएंगे। अब बैगर वो नहीं जो रोडू रास्ते पर जहां तहां बैठे रहते हैं, ये भी क्लियर कर दिया, वो रोलू बैगर्स की बात नहीं है, ये रायल बैगर्स है जो भीख मांगते रहते हैं। वो रोलू बैगर्स देखो कैसे रोगी होते हैं, कैसे दुखी होते हैं, यहां भी ऐसे हैं, बहुत रोगी बनते हैं, बहुत दुखी बनते हैं, कर्मों की कैसी गंदी भोगना होती है। जानवरों को देख करके फिर भी दिल खुश हो जाएगी, ऐसे गंदे मनुष्यों को देख करके तो नफरत आती है। ज्ञानी आत्मा समझ सकती है इन्होंने कैसे गंदे कर्म किए हैं। बहुत गंदे काम करने से ऐसे डर्टी ब्रूट्स वैश्याएं लंपट लूले लगड़े बन जाते थे। बड़े बड़े घर की भी वैश्याएं हैं, तीर्थों पर भी पंडालों में जाकर के देखो, वहां वैश्याएं बैठी रहती हैं। 9 जनवरी 1967 की वाणी का तीसरा थी, पंडे लोग भी बड़े गंदे होते हैं। बाबा को तो सब बातों का अनुभव, ऐसे कोई मुश्किल अनुभवी होंगे, जैन भी है गांव का छोरा, अभी इनका ये अंतिम 84वां जन्म, गांव का छोरा था ना, बाबा को इन सब बातों का अनुभव, धंधा भी क्या चलता था, हर इतवार को 5-6 आना कमा लेती थी। तो शास्त्रों में जो बातें हैं वो कुछ कुछ ठीक है, परंतु इनका अर्थ वो समझ नहीं सकते हैं। बात या करके बताते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो जो ही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वो अभी फिर आए बैगर बनता है, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। बैगर टू प्रिंस बनेंगे कब बनेंगे, 84वां जन्म पूरा होने के बाद वही कृष्ण की सोल कोई बैगर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। कष्ट की राशि किससे मिलाते हैं? क्राइस्ट से। क्राइस्ट के लिए भी क्या बोला, इस समय कहाँ होगा? कहीं बैगर के रूप में भीख मांग रहा होगा। तो क्राइस्ट की भी जीवन हिस्ट्री वही बता दी, कृष्ण की भी जीवन हिस्ट्री वही बता दी, भविष्य के लिए इशारा कर दिया सन 67 में कि फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। माना कृष्ण की उर्फ ब्रह्मा की सोल कोई बैगरी पाठधारी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके बैगर बनती है, फिर बैगर टू प्रिंस बनती है। बैगर थी ना, अभी करके थोड़ा कमाया है, वो भी तुम बच्चों के लिए। ब्रह्मा बाबा ने भी जो कमाई की वो किसके लिए? तुम बच्चों के काम आई ना, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे होती? ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है, सारी बातें शिव बाबा आकर के बताते। बरोबर ये गांव का छोरा था, इनका नाम कोई कृष्ण नहीं था, आत्मा की बात है ना, इसलिए मनुष्य मुझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर घर घर में चित्रों का सर्विस करो, लिख दो ये बेहद के बाप से किस जन्मों के लिए स्वर्ग की बात चाहिए, सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर के समझो। जैसे दिवाली पर सब मनुष्य दुकान निकाल करके बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल करके बैठना है, तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य करते हैं दिवाली पर, और तुम फिर शिव जयंती पर करो, तो शिव बाबा सबक की ज्योति जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वो तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहां जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ये सब राज बाप आकर के समझाते हैं, जगदम्बा से विश्व की बादशाही मिलती है, यह राज बाप आकर के समझाते हैं। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा नहीं समझाते, क्योंकि मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ओमरादे मम्मा पहले ही शरीर छोड़ चुकी थी, बाद में ये महावाक्य बोला गया, तो फिर ये राज कैसे समझ में आए? जब मम्मा ने शरीर ही छोड़ दिया तो जगदम्बा से तुमको विश्व की बात सही मिलती है, ये बात तो झूठी हो गई। लेकिन अभी समझ में आता है कि ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद विश्व की बादशाही का वर्षा बाप मां के द्वारा दिलवाती है। माताएं बनती हैं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त, बाबा कोई शास्त्र थोड़े ही चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं तो नॉलेज फुल हूं, हाँ ये जानते हैं कि फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए वो बच्चे याद पड़ते रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक को बैठ करके जानता हूं, दरकारी हाँ कोई समय पता पड़ जाता है ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल से ही मालूम पड़ जाता है। तो ऊपर से बाबा भी कहलाए कर भेजते हैं कि इनसे पूछो, तो ऊपर से बाबा भी कहलाए कर भेजते हैं इन से पूछो, ऐसे तो ड्रामा में नूद है जो कोई कोई के लिए बताते हैं, सब के लिए नहीं बताते, बाकी ऐसे नहीं सब के लिए बता देंगे, ऐसे तो ढेर है, काला मुंह करते रहते हैं, क्लास में आकर बैठते रहते हैं, अब जो करेंगे तो अपने ही नुकसान करेंगे। हाँ, कोई अगर उलट काम करते हैं, क्लास में आकर बैठते हैं और बाबा को आकर के सच बताते हैं तो हो सकता है उनका कुछ फायदा हो जाए, ना बताने से तो और ही अपना नुकसान करेंगे। समझना चाहिए, बाबा हमको गोरा बनाने के लिए आए और हम फिर काला को करते हैं, इसमें भी बाप जो क्रिएटर है उस पर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं तो उसको कुछ देने का नहीं होता है, क्रिएटर कौन हुआ? शिव ज्योति बिंदु को क्रिएटर नहीं कहेंगे, रचता नहीं कहेंगे, वो जब साकार शरीर में प्रवेश करके बाप के रूप में पार्ट बजाता है तब क्रिएटर है। तो क्रिएटर के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है कि कोई विकारी को वर्षा न मिल जाए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे अवज्ञाकारियों को कुछ भी देना नहीं होता है, अगर उनको दे देंगे तो वो पाप ही करेंगे, उनका दोष देने वाले पर आ जाएगा। बाकी कन्या को तो समझाना है, अगर कन्या नहीं मानती है तो शादी करवा देनी पड़े, कन्या ज्ञान में नहीं चलती है और उसकी शादी भी नहीं करेंगे तो समाज में गंदी हो पड़ेगी, मुंह काला करवाए देगी, ये है ही कांटों की दुनिया, ये ह्यूमन कांटे हैं, वो तो जड़ फूल होते हैं, जड़ कांटे होते हैं, और ये मनुष्यों की दुनिया के कांटे हैं। कांटा लगता है तो कितना तकलीफ देता है। साधु संत आदि जो भी है सब जंगली है, सत्य को कहा जाता है गाड़ना फल्ला, और ये है फॉरेस्ट ऑफ स्टोन। तुम भी बंदर थी ना, शास्त्रों ने क्या क्या लिख दिया है, कितनी झूठी बातें लिख दी है, ये है धर्म की ग्लानी। ग्लानी के नावल से लिखे हुए हैं, इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं। ये दुनिया महामूर्खों की है। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो 84 जन्मों के बाद कैसे महामूर्ख बन जाते हैं, क्या बोल दिया? फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, जो सतयुग का पहला पत्ता बनता है वो फिर 84 जन्मों के बाद, कब हुए 84 जन्म पूरे है? उनके 84 जन्म पूरे कब हुए? अरे 68 में 84 जन्म पूरे हुए ना, तो 84 जन्म पूरे होने के बाद कैसे महामूर्ख बन जाते हैं? कृष्ण की सोलो महामूर्ख बन गई, शरीर नहीं रहता तो कोई भूत प्रेत आत्मा दूसरों में प्रवेश नहीं करती है क्या? उल्टे पलटे कर्म नहीं करती है? बुल्लार दादी में भी प्रवेश करके जो कुछ बोलते हैं उस बोले हुए का अर्थ उनको खुद भी पता नहीं होता। जैसे फिल्मों के गीत बाबा ने बनवाए, बनाने वाले उनके अर्थ को नहीं जानते। बाबा करके बताते हैं तो हम बच्चे समझते हैं। तो बोला ये महामूर्खों की दुनिया है। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसे महामूर्ख बन जाते हैं। कैसे महामूर्ख बन गए? पहला पत्ता महामूर्ख कैसे बन गया है? हाँ, वो कृष्ण की सोल 84वें जन्म में अपना शरीर छोड़ने के बाद जब जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाता है तो न जगदम्बा को ये बात पता चलती है कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है, और न प्रवेश करने वाली उस कृष्ण रूप ब्रह्मा की सोल को निश्चय बैठता है लंबे समय तक कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है। जगदम्बा भी समझती है गीता का भगवान साकार में इस सृष्टि पर दादा लेखराज ब्रह्म है, क्योंकि जगदम्बा है सर्व ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बीज। जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं वो गीता का भगवान साकार में किसको समझती हैं? है दादा लेखराज ब्रह्मा को समझती है। ये बात नहीं है, सरेंडर होने वाले भी बुद्धि से सरेंडर होते हैं या सिर्फ निरबुद्धि बन करके सरेंडर होते हैं? एक जैसे हैं, कोई को तो उनके मां बाप सरेंडर कर देते हैं, कुछ धक्का लगता है तो सरेंडर हो पड़ते हैं। सरेंडर हो पड़ते हैं फिर जब 18 साल के होते हैं तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देते हैं कि हमको तो नाबालिग अवस्था में सरेंडर किया गया था, अब तो हम बालिग समझदार हो गए हैं, हमारा निश्चय हमारा सरेंडर लेटर खारिज कर दिया जावे, खारिज समझा जावे। तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? कहेंगे पुष्करणी ब्राह्मण। दूसरों ने पुष किया तो सरेंडर हो गए, अपनी अकल से असलियत को नहीं जाना। तो ब्रह्मा की सोल अभी भी जो कृष्ण की सोल है, सृष्टि का पहला पत्ता है, वो अभी भी असलियत को नहीं जानता। असलियत को अगर जाना होता तो ब्रह्मा बाबा के लिए मुरली में शिव बाबा ऐसे नहीं बोलते ये ब्रह्मा है बेबी बुद्धि। शिव बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं, बेबी माना बच्चा बुद्धि। और वो ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद जिस बच्ची में प्रवेश करता है उस बच्ची का नाम भी लौकिक में बेबी रख दिया जाता है। तो दोनों ही बेबी, जिसमें प्रवेश किया वो भी बेबी और जो प्रवेश करने वाली आत्मा वो भी बेबी। बाप का टाइटल किसको मिल गया? जगदम्बा को बाप का टाइटल मिल गया। बाप का टाइटल जगदम्बा को मिल गया। ये टाइटल रखाने न रखाने से, लौकिक दुनिया के टाइटल और रखाने से कोई ज्ञान में विशेष कनेक्शन नहीं है। ऐसे बहुत से निकल पड़ते हैं, जो लौकिक दुनिया का टाइटल अपने ऊपर रखवा लेते। अरे ज्ञान में लौकिक का फकुर होना चाहिए या अलौकिक का फकुर होना चाहिए? कौन सा फकुर होना चाहिए? लौकिक जन्म मनाने का फकुर होना चाहिए या जो अलौकिक जन्म है उसका फकुर होना चाहिए? लौकिक दुनिया ही खत्म हो गई, उसका टाइटल की क्या परवाह? तो जगदम्बा और जगदम्बा में प्रवेश करने वाली जो सोल, जो इंस्पिरेटिंग पार्टी की मुखिया है, मन ब्रह्मा की सोल, दोनों ही बेबी बुद्धि, और उनकी बेबी बुद्धि तब तक बालक नहीं बन सकती जब तक उनकी बुद्धि में ये बात फिट न बैठे कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है साकार। जब उनकी बुद्धि में बैठे जो सारे जगत की माताओं की माता है, ब्रह्मा कुमारियों की भी माता है, उसकी बुद्धि में बैठे, तब सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में बैठे कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ कैसे है, और दादा लेखराज ब्रह्मा साकार में गीता का भगवान नहीं है। अभी सब तमो प्रधान ये ड्रामा बना हुआ है, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। कौन हुआ वो एक? माता के ऊपर इतनी जिम्मेवारी रख दी, उसमें वो पहला पत्ता प्रवेश करता है। जब इतनी जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी को उठाने के लिए अलर्ट भी रहना पड़े। जब तमो प्रधान है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते, क्या क्या करते रहते हैं, ये भी सब ड्रामा में नूद है। फिर स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चे जानते हो ये चक्कर कैसे फिरता है? कोई विद्वान आचार्य पंडित आदि कुछ भी नहीं जानते, पॉइंट्स तो ढेर के ढेर है, ये ढेर के ढेर पॉइंट्स नोट करना चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग होते हैं पॉइंट्स का रजिस्टर नोट करके रखते हैं, डॉक्टर लोग भी अपने पास किताबें रखते हैं, नोट करते हैं, नोट्स को देख करके दवा देते हैं। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए और सर्विस करनी चाहिए। बाप ने नंबर वन मंत्र दिया है कौन सा है? मन मना भव। क्या मतलब हुआ? मेरे मन में समा जा, मन मना मेरे मत को बिगड़ करके बना मन, मत मत मना भव, संधि को जोड़ दिया तो हुआ मन मना भव। तो मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समा जा, मेरे मन में समा जा। ये किसने कहा है? शिव बाबा। शिव बाबा ने कहा या शिव बाप ने कहा? शिव बाप ने कहा। शिव बाप को अपना मन होता है? मन तो उनको होता ही नहीं। तो शिव बाबा की बात है कि वो शिव ज्योति बिंदु कोई शरीरधारी में प्रवेश करता है मुकर्र रथ में, और जो उसका संकल्प है वही बच्चों का संकल्प होना चाहिए। माने संकल्प मात्र भी बच्चे बाप के विरोध में न जावे। कर्मणा से कर्मेंद्रियों से विरोध का काम करे, दृष्टि से विरोध का काम करे और वाचा से विरोधी बातें करे, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहां तक बाप के सहयोगी बने, संकल्प मात्र भी बाप के संकल्प का विरोध नहीं करना चाहिए, परखना है कि ऐसी स्थिति में बाप का संकल्प क्या होगा, बाप को मेरा कर्म अच्छा लगेगा, जो मैं बोल रहा हूं वो वाचा बाप को पसंद आएगी, अगर बाप को पसंद नहीं तो मेरे को भी पसंद नहीं। तो बाप ने नंबर मन मंत्र दिया है, मन मना बन बाप को याद करो, जो भी कर्म करो बाप की याद आनी चाहिए, जो भी वाचा बोलो बाप की याद आनी चाहिए, बाप इस वाचा को स्वीकार करेगा। जो भी संकल्प करो बाप याद आना चाहिए, ये संकल्प बाप स्वीकार करेगा। तो ऐसे ऐसे बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। मेडल में भी ये लगा हुआ है, सबको ये महामंत्र दो कि बाप को याद करो, बाप और वसे को याद करो। तो स्वर्ग की बात सही मिल जाएगी। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव बाबा ने क्या किया, बड़े बड़े लोगों का जन्मदिन मनाते रहते हैं, नानक जयंती मनाते हैं या कोई भी महान पुरुष की जयंती मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? 500 करोड़ की जयंती क्यों नहीं मनाते? कोई ने अच्छा काम किया है तो उनकी जयंती मनाते हैं, तो शिव जयंती मनाते हैं तो शिव ने क्या किया होगा? शिव बाबा ने किया क्या? जरूर, जो दुनिया में किसी ने न किया हो वो शिव बाबा करके गए। और जो होते हैं मनुष्य गुरु, धर्म पिताएं, वो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, नई दुनिया बना करके नहीं जाते। नरक को मिटाए करके स्वर्ग बना करके नहीं जाते, दुनिया और ही नरक बनती जाती है। उनके आने के बावजूद भी दुनिया स्वर्ग बनती है या नरक बनती है? और ही नरक बनती जाती है। विकार बढ़ते जाते हैं, अवगुण बढ़ते जाते हैं, सहानुभूति स्नेह सहयोग की भावना घटती जाती है। तो दुनिया में झगड़े बढ़ते हैं या घटते हैं? उनके आने के बाद, उन धर्म पिताओं के आने के बाद भी दुनिया में झगड़े बढ़ते जाते हैं। इससे क्या साबित हुआ? कि उन्होंने नरक बनाया। वो नर मनुष्य थे, मनुष्य को नर कहा जाता है। नर जो कुछ भी करेगा तो नरक बनेगा। नरक नाम क्यों पड़ा? नर ने जो कुछ भी किया काम, उसका रिजल्ट क्या निकला? नरक। और बाप आकर के जो कुछ कराते हैं उससे बनता है स्वर्ग। तो बाप ने आकर के पहला मंत्र क्या दिया? स्व को जानो, स्व माने आत्मा। जो स्व की स्थिति में टिक जाएंगे उनके लिए इसी दुनिया में स्वर्ग हो जाएगा, शांति धाम बन जाएगा। आत्मा शांत स्वरूप बन जाएगी। शांति आत्मा के गले का हार है, जब चाहो तो हार को पहन लो, स्वयं स्थिति में टिक जाओ तो शांति धाम को महसूस करेंगे। अगर देवान में आते हैं तो अशांति महसूस होती, तो बाप ने आकर के जो कुछ किया उसका रिजल्ट हुआ स्वर्ग, और मनुष्यों ने आकर के जो कुछ किया, कितने भी महान मनुष्य हुए हो, उससे बना नरक। ये बातें जो योग युक्त होंगे उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाएंगी। किसके साथ योग युक्त होंगे? बाप के साथ योग युक्त होंगे तो उनको अच्छी रीति ये बातें बुद्धि में बैठेंगी, और बाप के वियोगी होंगे कि बाप आया था अब चला गया, अब नहीं है इस दुनिया में, तो जो ऐसे ऐसे वियोगी होंगे उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं। योग युक्त नहीं होते हैं तो समझो उनके पाप रह गए। बल 70 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, फिर भी अगर ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है तो क्या समझना चाहिए कि ईश्वर बाप के आने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे उल्टे कार्य किए हैं जिनके 100 गुने पाप कर्म इनके सर के ऊपर चढ़ करके इनको ईश्वरीय ज्ञान अभी भी समझने नहीं देते। ऐसों की फिर इतनी सदगति नहीं होती है। इतनी माने कितनी? इतनी सदगति नहीं होती है, ऐसी आत्म की स्थिति नहीं बनती है, आत्मा की कट इतनी नहीं उतरती है जो परमात्मा के ज्ञान के जो गुह्य राज है वो समझ सके। तो सदगति तो दुनिया में सबकी होगी, 500 करोड़ आत्माओं की भी सदगति होगी, लेकिन नंबरवार सदगति होगी। कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहेंगी। सुख में रहना माना सदगति, और दुख महसूस करना माना दुर्गति। दुखी आत्मा खुद भी दुख में रहेगी और दूसरों को भी दुख अनुभव कराएगी। जो सुखी आत्मा होगी वो खुद भी सुख में रहेगी और दूसरों को भी सुख के वाइब्रेशन फैलाएगी, सुख की वाचा बोलेगी, सुख देने के कर्म करेगी। तो जिनकी इतनी सदगति नहीं होती है परंतु ज्ञान बहुत समझाते हैं, क्या सदगति नहीं हुई है इतनी जो बाप के गुह्यराज की बातों को समझ सके, फिर भी दूसरों को ज्ञान बहुत समझाते रहते हैं, तो कहेंगे इनमें ज्ञान बहुत है। लेकिन ज्ञान की धारणा प्रैक्टिकल में नहीं है। योग नहीं होगा तो धारणा हो न सके। किसके साथ योग नहीं होगा? बाप के साथ, जो बाबा आया हुआ है उसके साथ योग नहीं होगा। इसकी पहचान क्या है? योग माना प्रीति, प्यार, स्नेह। कोई के साथ स्नेह है माना योग जुटा हुआ है। स्नेह नहीं है माना योग नहीं है। जिसके साथ स्नेह होता है उसके सहयोगी बनते हैं। योग अगर कहीं दूसरी जगह लगा हुआ होगा तो उसके सहयोगी बनेंगे, बाप के सहयोगी नहीं बनेंगे। तो इतनी सदगति नहीं होती है, ज्ञान बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। कहेंगे कि उन आत्माओं का बाप के साथ योग कुछ भी नहीं है, दूसरों के साथ लव लगाया हुआ है, कोई न कोई नाम रूप में फंसे रहते। ऐसे नाम रूप में फंसे हुओं की फिर दुर्गति होती है। ऊंचे ऊंचे बाप आया हुआ है, दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम बाप के कार्य में सरेंडर हैं, और अंदर से कोई दूसरों के नाम रूप में लगाव फंसा हो जाता है, लागत लग जाती है, तो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या दुनिया को सही रास्ते पर लाने वाले वो तो धूल झोंकने वाले हुए। उनका नाम दिया है गणिका, गणिकाए माने वो वैश्याएं जो मजलिस में जाकर के गीत गाती हैं भगवान के, गीत भगवान के गाती है, गुणगान भगवान के करती है, और रहती किसके साथ है प्रैक्टिकल में है? जो उनकी रह में रह मिला करके चलते हैं। उन्होंने जो गीत गाया उस गीत के साथ ही सुरताल मिलाई देते हैं, जिनको कहा जाता है सत्य वचन महाराज। सत्य है कृपा निधान, ठीक है दया निधान, जो कुछ भी बोला हर बात में तबला सारंगी की धुन मिला देंगे। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे होता है, कहने के लिए कहा जाएगा, सेवाधारी है, हम सेवाधारियों का बाप ही मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आता है, लेकिन जो ऐसे सुरताल मिलाने वाले हैं वो उनको ऐसा ऊंचा चढ़ाते हैं कि उनके टाइटल ही बदल देते, टाइटल रखवाए देते हैं। क्या टाइटल रखवाते हैं? वर्ल्ड मदर का टाइटल दिलवा देते, सह संचालिका, मुख्य संचालिका, ऐसे ऐसे टाइटल रखवा देते। ये काम उन सुरताल मिलाने वालों के हैं, ये बाप का ज्ञान नहीं कहता है कि हम संचालक और संचालक बनकर के बैठे। यहां संचालक कौन है? इस ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वरीय संस्था का संचालक या परिवार का संचालक एक ही शिव बाबा है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा जावेगा तो इनकी गद्दी पर कोई दूसरा बैठ जाएगा, या ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो गद्दी कोई दूसरे के हाथ में आ जाएगी। यहां तो एक ही सदगुरु है, उस एक ही सदगुरु से सबकी सदगति होनी है। तो ये नाम रूप में फंसे होने की बीमारी ऐसे नहीं है कि बाहर की दुनिया में ही होती है, ब्राह्मणों की आधार मूर्तों की दुनिया में भी है, रही है, और उसी से पतन हुआ है। और जो एडवांस की बीजरूप आत्माओं की दुनिया है उसमें भी ये नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत बुरी लग जाती है और पतन हो जाता है। इसलिए दोनों ही जगह बात लागू होती है, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ओम शांति।